जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Nitai Gaurai bol, Hari bol, Hari bol, bol Hari bol. Jai Om Vishwapad Paramhansa Vadivacharya Stotra Mahesi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Niti Lila Pravishma Vishwapad Paramhansa Vadivacharya Stotra Divangit Bhakti Siddhanta Sasti Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishno Vrindaki Namacharya Haridas Thakur Ki Premte Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Vrindaki Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Govardhan ki Shri Mathura Vrindavan Dham ki Navadvip Mayapur Dham ki Ayodhyapuri Dham ki Jagannathpuri Dham ki Gangamayi Jamunamayi ki Tulsi Devi Bhakti Devi ki Hari Naam Sankirtane ki Samaveda Bhakta Vrinda ki Hari Krishna Mahamantra ki The most beautiful Lord Shri Radha Vrindavan Chara Bhagwan ki Shri Gaur Nitai ki Shri Jagannath Baldev Subhadraji ki Gantaraj Srimad Bhagavatam ki Janitai Gauri Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories all to the Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Nashtra Prayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Deviki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranada Klesh Nashaya Govindaya Namo Namaha Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janatiyasu Vairagyam Jnanam Chayan Ahetukam. Aaj hum log Srimad Bhagavatam se chauthe skandh adhyay 29 और श्लोक संख्या 68 सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचरः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सर्वे क्रमानुरोधेन Manasindriya Gocharaha आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनः सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचराः आयान्ति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनः माताजी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति को इच्छा के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। यह मन में विभिन्न मिश्रणों के रूप में प्रकट होते हैं, अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई है और न देखी गई होती है। प्रभा जी कह रहे हैं तात्पर्य में, कुत्ते के शरीर में स्थित जीव के कार्यों का अनुभव किसी भिन्न शरीर के मन के द्वारा किया जा सकता है, अतः ये कार्य न तो कभी सुने गए और न ही देखे गए प्रतीत होते हैं। मन बना रहता है, ये तभी शरीर बदल जाता है। यहाँ तक कि इसी जीवन में भी हम कभी कभी अपने बचपन के स्वप्नों का अनुभव करते हैं। यदि वैसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती हैं, किंतु वे सब मन में अंकित हुई रहती हैं, फलतः वे स्वप्न में दिखाई पड़ती हैं। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है और इसी के द्वारा आत्मा का देहांतरण होता रहता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न नहीं हो जाता, तब तक ये इच्छाएं आती जाती रहेंगी। यह तो मन का स्वभाव है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब तक मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं रहता, तब तक वह नाना प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा करता रहेगा। इंद्रिय प्रतिबिंबों का अंकन क्रमानुसार हुआ रहता है और वे एक एक करके प्रकट होते हैं, अतः जीव को एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। मन भौतिक सुख की योजना बनाता है और स्थूल शरीर इन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करता है। मन वह मंच है जिससे होकर समस्त इच्छाएं तथा योजनाएं आती जाती हैं। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते दे कोरिया एक आरोण कोरी है मोने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर सबों को गुरु के आदेशों का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए, यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन हो तो मन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रशिक्षण तो ही जीवन की सार्थकता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाक्य चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीवदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सगर जगन्नाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणलिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदी तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सुधी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंकं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं जयतां सुरतोपङ्गुं मन्दमतिगतिमसत्पदाम्बुजो श्रीराधामदनमोहन तो श्रीमद् भागवतम का जो 29वां अध्याय है से जो पुरंजन की कथा का उपसंहार है पिछले चार अध्यायों में अध्याय 25, 26, 27, 28 में नारद मुनि ने प्राचीन वरी राजा को वर्णन किया है पुरंजन की कहानी के बारे में और इसका ये स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसमें कि उस कहानी का क्या गूढ़ तत्व है वो बतला रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो पुरंजन का मतलब होता है पुर का मतलब होता है देह शरीर और जन का मतलब है आत्मा। तो हम सभी पुरंजन क्योंकि हम जो है ये आत्मा जो है मैंने हम है वो एक पुर मैंने एक देह में स्थित है लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं तो वास्तव में ये शरीर हम नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर दिस स्पिरिट सोल। तो जैसा बताया गया आसीत पुरंजन नाम राजा राजन बृहस्वा तस्य अभिज्ञात सखा आसीत तस्य अभिज्ञात सखा नाम आसीत सखा अभिज्ञा चिष्ट। तो जो पहले अध्याय में बतलाया था 25वें में नारद मुनि की एक राजा था उसका नाम था पुरंजन और उसका एक मित्र भी है वो मित्र क्या है अविज्ञात है अननोन। तो हमारा जो मित्र है वो परमात्मा है श्रुतम सर्वभूतानाम भगवान परमात्मा के रूप से सभी जीवों के हृदय में निवास कर रहे हैं और हमारे सबसे परम मित्र हैं। लेकिन जीवात्मा जब ये भूल जाता है कि परमात्मा ही उसका सबसे सच्चा मित्र है उसका सबसे बड़ा वेल विशर है तो वो उस भूलने के कारण जो है नाना प्रकार की योनियों में शरीर बदलता रहता है बर्थ आफ्टर बर्थ जन्म जन्मांतर तक। वो नहीं जानता कि उसके शरीर में ही जो है हृदय में उसका एक मित्र भी है वो परम मित्र है परमात्मा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुन तिष्ठति। और वो मित्र है उसे बराबर बार बार उसको एडवाइस करता है उपदेश देता है शिक्षा देता रहता है लेकिन आत्मा हालांकि ऐसे तो पवित्र है मम ईवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना ये सनातन है और चिन्मय है लेकिन माया के संयोग से ये भूल जाता है। तो ये अविज्ञात मने जो सखा है वह हमें जानना पड़ेगा। तो इस तरह का वर्णन करते करते अब यह प्राचीन वरी राजा को बतलाया कि वास्तव में तुम ही पुरंजन हो ये कथा मैंने बतलाया तुमको और राजा को कहा कि तुमने जितने भी यज्ञ इत्यादि किए हैं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए उसका फल अच्छा नहीं होने वाला है। उन्होंने दिखाया अपनी दिव्य दृष्टि से देखो आसमान में देखो जिन जानवरों को तुमने बलि दिया है यज्ञ में स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे ही तुम ये देह छोड़ोगे वो तुमको पकड़ के और तुम्हारी मांस भूटी नोच नोच के खाएंगे। देखा राजा ने राजा भयभीत हुआ। तो वास्तव में देखा जाए तो ये कथा के माध्यम से कहा गया कि जितने भी कर्मकांड हैं दान यज्ञ वेदों का स्वाध्याय ये जितने भी कर्म हैं ये पुण्य कहते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेतितः सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। तो ये चार प्रकार के पुण्य भगवान ने बताया गीता में, गीता के आठवें अध्याय के अंतिम श्लोक में, कि वेदों का अध्ययन स्वाध्याय, यज्ञ इत्यादि करना, दान देना, तपस्या करना, इन सब पुण्य फलों को भक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में भक्ति के द्वारा, भक्ति करने वालों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, वैदिक कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, दान इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यज्ञ ये कहा गया कि दस अश्वमेध यज्ञ करने वाला कभी पुनर्जन्म हो सकता है, जिसने दस अश्वमेध यज्ञ किया हो। हालांकि कलयुग में तो एक अश्वमेध यज्ञ करना भी असंभव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक बार अर्चना प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। श्रुति का कथन है, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा विथाव तुल्यम। एक भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी कृष्ण ने प्रणाम किया और दस अश्वमेध करने वाला भी उस एक प्रणाम की बराबरी नहीं कर सकता है। जिसने दस अश्वमेध किए हैं उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ले सकते हैं, लेकिन जो एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम भी किया, एक बार अर्चना भी किया, वो दोबारा माता के स्तन का दूध नहीं पिएगा। तो ये संसार है, संसार में जीव भटकता रहता है। संसार का मतलब क्या है? संसार का अर्थ यह है कि जो जीवात्मा को, जीव को भटकाता रहे, नाना प्रकार की योनियों में जन्म जन्मांतर, उसका नाम है संसार। तो संसार को अगर पार करना है, संसार को नष्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए एक भक्ति योगी ही एक मात्र साधन है। और भक्ति किसके लिए करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रति, देवताओं की भक्ति नहीं। सबसे बड़ा धर्म ये एतावानि लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परः स्मिता। यमराज अपने यमदूतों से कह रहे हैं कि एतावानि लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परः स्मिता भक्ति योगो भगवती तदनाम गृहणादि। इतने प्रकार की धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति योग। और भक्तियों का प्रारंभ कैसे होता है? भगवान के नाम के कीर्तन और श्रवण के द्वारा। भक्ति योगो भगवती तदनाम गृहणादि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। तो इस संसार में नाना प्रकार के धर्म है, वैदिक धर्म है, दान धर्म है, यज्ञादि धर्म है, तपस्या के धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा धर्म है? भक्ति योग। भक्ति योगो भगवती तदनाम ग्रहणा देवी। तो नारद ने कहा प्राचीन वरी राजा से कि तुमने नाना प्रकार के यज्ञ किए और यज्ञ में जानवरों की, पशुओं की बलि दिया, वैदिक कर्मकांड किया, तो उसे क्या लाभ हुआ? उसे यही है कि तुम अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन वहां से भी पुनः वापस आना पड़ेगा। और जो कर्म किया है, जो उन पशुओं को आघात पहुंचाया है, उसके लिए तुम्हें रिएक्शन भी भोगना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग में भी जाओगे, लेकिन जो पाप किया है, जिस प्रकार की पुनरंजन राजा ने क्या किया, उसने भी यज्ञ इत्यादि किए थे और शिकार भी खेलने गया था, तो वहां भी पशुओं की हत्या की और यज्ञ में ये पशुओं की बलि दी, तो हालांकि वो यज्ञ के कारण वो स्वर्ग लोक में भी गया, लेकिन उसको कुछ काल तक नरक में भी जाना पड़ा।
तो ये सब जो वैदिक कर्मकांड में महाराज पुरोहित को नारद मुनि पहले ही कह रहे थे कि भैया तुम गलत कर रहे हो और ये तुम मत करो, तो उसको शायद समझ में नहीं आता। तो उसको ये समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये 25 अध्याय, 26, 27, 28, 4 अध्याय में पूरा नारद मुनि पूरा पुरोहित की कथा विस्तार पूर्वक कहा, और ये समझाने के लिए कि हाँ ये कहानी के द्वारा ये हो सकता है ये राजा समझ में आ जाए कि हम जो वैदिक कर्म कांड कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तो अभी इस श्लोक का जो मेन है कि जीवात्मा जो शरीर धारण करता है वो दो प्रकार के शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के नाश होने के बाद भी जो है सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो एंड कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, ये जो है सूक्ष्म शरीर है। ये उस सूक्ष्म शरीर जो है, एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप हजारों हजारों स्थूल शरीरों में प्रवेश करते रहते हैं। बाई वन सटल बॉडी यू आर इंटरिंग इन टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस बॉडीज, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, मन में जो चेतना रहती है, जो कॉन्शियसनेस रहती है, उसी कॉन्शियसनेस, उसी चेतना के द्वारा, उसी कॉन्शियसनेस के द्वारा आपको दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार की, जैसे भगवान ने गीता में उदाहरण किया कि वायु जो है, वायु जो है गंध को उसके स्थान से ले जाकर के दूसरी जगह ले जाती है। वायु तो प्योर है, हवा तो निर्मल है, प्योर है, वो गंदी नहीं। लेकिन कहीं हम बोलते हैं कि बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत सुगंध आ रही है। अगर वो इत्र इत्यादि खुशबू फ्लावर गार्डन से जाती है तो लगता है कि हवा सुगंधित है, और अगर हवा जो है कीचड़ मलमूत्र से जाती है तो हम कहते हैं कि वायु दूषित है। लेकिन वायु तो न तो दूषित है न सुगंधित है। उसी प्रकार जीवात्मा भी वो निर्मल है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। लेकिन जिस प्रकार की वायु जो है गंध को गंध के स्थान से ले जाती है और नाक तक ले जाती है, उसी प्रकार ये जो जीवात्मा भी है वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन, बुद्धि, अहंकार की चेतना के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। शरीरम यद आपनोति यश्चापि क्रामदिश्व वायुर्गंधानिवासयान। तो जिस प्रकार, तो ये जो उदाहरण दिया गया है, अभी महाराज पुरंजन, महाराज प्राचीन भरी ने दो प्रश्न किए इसके पहले और उसका ही उत्तर इन श्लोक में दे रहे हैं तीन चार वर्सेस में नारद मुनि। पहला प्रश्न ये था कि जीवात्मा एक शरीर के द्वारा कुछ कर्म करता है तो उसका जो फल है पाप पुण्य वो दूसरे शरीर में क्यों भोगता है। मैंने इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में मैंने कुछ पुण्य किए और कुछ पाप किए, फिर उसको अगले जन्म में दूसरे शरीर में किसी दूसरे प्लैनेट में जाकर उसका फल भोगना पड़ता है। अगर पाप कर्म किए तो दूसरा शरीर मिलेगा, पशु का, कुत्ते, बिल्ली का, जो भी योनि मिले, और किसी अधलोक में जाकर के, नरक लोक में जाकर के उसका पाप पुण्य क्यों भोगता है। वो शरीर तो मैंने पाप कर्म इसमें किया है इस शरीर से, और उसका फल दूसरे योनि में, दूसरे प्लैनेट में क्यों भोगना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न यह था महाराज प्रयोजन का कि मैंने जो भी ये हम कार्य करते हैं, हमने जो भी कार्य अच्छा किया या बुरा कार्य किया, वो कार्य वहीं तुरंत समाप्त हो जाता है। भोजन किया, भोजन करने का काम समाप्त हो गया, अब हम दूसरा कार्य करें, हम चलने लग गए हैं या बैठने लगे, सोने लग गए हैं, तो भोजन करने का कार्य समाप्त हो गया है। लेकिन उसका जो फल है, उसका जो रिएक्शन है, वो बाद में क्यों मिलता है? वो कार्य खत्म हो गया, उस कार्य के बाद में तो कोई कुछ सोचता भी नहीं है, हमने अच्छा खाया, बुरा खाया, उसका फल जो है बाद में क्यों भोगना पड़ता है? तो अभी इसका उत्तर पिछले तीन चार वर्षेस से नारद मुनि दे रहे हैं। कहते हैं कि दिस रीजन फॉर रिएक्शन इन द नेक्स्ट बॉडी इज दिस सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सटल बॉडी ही एक रीजन है जिसके द्वारा हम एक शरीर के द्वारा किए गए पाप पुण्य को कर्म का फल दूसरे शरीर में भोग रहे हैं, उसका कारण है सटल बॉडी। और सटल बॉडी कभी नाश नहीं होगा। नाश कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। ओनली भक्ति कैन डिस्ट्रॉय द सटल बॉडी। लेकिन वो सटल बॉडी इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता है भक्ति के द्वारा भी। एज सून एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द भक्ति वो सटल बॉडी मैंने टेक्स टाइम, जो है समय लेता है कि इमीडिएटली वो स्टॉप नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है। क्योंकि ये क्या है कि जिस प्रकार कि हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को कंप्लीट करने में समय लगता है, उसी प्रकार जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया उसके पहले श्लोकों में कि अगर आदमी सो रहा है, स्वप्न अवस्था में है एंड ही इज ड्रीमिंग, तो उसका एक्टिव बॉडी नहीं रहता वहां। एक्टिव बॉडी इज गोज टू डोरमेंट, बिकम डोरमेंट। हमारा जो सक्रिय शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, हम सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन मन जो हमारा जो है, माइंड हमारा एक्टिव है। तो उसमें वेकिंग बॉडी जो है वो इनएक्टिव है और स्लीपिंग बॉडी जो है वो एक्टिव है। तो वेकिंग बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा दूसरा बॉडी है स्लीपिंग बॉडी, वो माइंड के द्वारा वो सोच रहा है। और हम ऐसे ऐसी घटनाओं को देखते हैं और सोचते हैं जो हमने कभी ने सुनी है और न कभी देखी है। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है, हम जो भी स्वप्न देख रहे हैं वो उसी घटना कभी न कभी जरूर घटित हुई है, पहले जन्म में हुई होगी, कितना कब जन्म में मालूम नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि कई बार हम स्वप्न में देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है, उसके बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है। वी आर समटाइम्स सीइंग देयर इज अ ओशन ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन। तो ये तो ऐसा इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी लोक में हो। हम पिछले कई जन्मों में पहले, हजारों लाखों जन्म पहले कभी ऐसे लोक में गए होंगे जहां पर कहीं ऐसा पहाड़ होगा, उसके ऊपर ये समुद्र होगा। कई बार हम स्वप्न में देखते हैं कि हमारा धड़ है लेकिन सिर नहीं है। हाँ, हम देख रहे हैं कि हम जो है लेकिन मेरा सिर कटा हुआ है। तो ये जो है किसी और का शरीर इस तरह देखा होगा हमने और उसको अपने आप से हम परसीव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि माइंड का जैसे तीन कार्य कहा गया है कि अनुभव करना, सोचना और उसको मनन करना, ये माइंड का तीन कार्य है। तो जब तक हम अपने मन को, जो जितने भी इंद्रियां हैं उनका राजा मन है, जैसे कि इसके पहले भी बताया कि पुरंजन जाता था शिकार खेलने के लिए, कहीं भी जाता था तो उसके पास कितने बॉडीगार्ड थे? 10 बॉडीगार्ड थे, 10 अंगरक्षक हुआ करते थे, 10 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और उनका एक कमांडर भी जाता था साथ में, वो कमांडर क्या है? मन है। माइंड इज द कमांडर। जो सोल्जर जाते हैं तो उसके साथ एक कमांडर भी रहता है। तो हमारे सब ये सैनिक हैं। 5 और ज्ञानेंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम किसी भी ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और समझते हैं ज्ञान, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा। तो ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसको करने के बाद में फिर वो कार्यान्वित करते हैं कर्मेंद्र के द्वारा। जैसे हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ। लेकिन इनका जो जो कमांडर है वो है मन है। तो मन को जब तक हम वश में नहीं करेंगे और मन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम बारंबार योनियों के ऊपर योनि लेते जाएंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशेवनम भक्ति उच्यते। तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का अर्थ यह है कि इंद्रियों के स्वामी, तो भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हम अपनी मन बुद्धि अहंकार जो भी चेतना है और जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां सबको अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारे सारी इंद्रियां और मन जो है संतुलित रहती हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन अगर मन को भटकने देते हैं तो मन इधर उधर भागता रहता है। इसके पहले भी एनालॉजी दिया था नाथ मुनि की, ये शरीर क्या है, रथ के बराबर है। शरीर की तुलना रथ से की गई है और इसमें जो है जो पैसेंजर है वो क्या है, या आत्मा है पैसेंजर है, और सारथी क्या है, बुद्धि है, और मन क्या है, लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं। तो जो सारथी बैठा हुआ है ड्राइवर, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है सारथी है, लेकिन अगर वो मन घोड़ों को अगर लगाम नहीं देगा तो हमारी इंद्रियां कहीं भी भागेंगी। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मन को जो है लगाम दें। अब वास्तव में देखा जाए तो नाना प्रकार की योनियों में देहांतर करने का सबसे बड़ा कारण मन है। जैसे अवंती ब्राह्मण ने जैसे ही कहा था कि ये जितने नायम जनों, ये दुख सुख के हेतु न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला, ये जितने भी लोग हैं ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। नायम जनो ये दुख सुख हेतु न देवता, मेरे देवता भी नहीं है हाँ, और न मेरा ये शरीर है, न मेरे ग्रह है, न ये टाइम है। मन परम कारण मामनंती, ये मन जो है ये सबसे बड़ा कारण है। क्या संसार चक्रम परिवर्तयेत, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि हम इस योनि में क्यों हैं। हम अगर ये कष्ट भोग रहे हैं, इस शरीर में भोग रहे हैं, हमारा जन्म पुनर्जन्म हुआ है, इसका कारण हमारा मन है, हमारी चेतना है। कहते हैं इसने हमें दुख दिया, उसने हमें दुख दिया, हमें ये समस्या कि नहीं, नायम जनो ये दुख सुख कहे तू, फिर वो देवताओं को दोष देते हैं कि अरे ये देवता लोग जो है, जो इंद्रियों के राजा है, हमें कष्ट दे रहे हैं। ग्रह कर्म काला, ना हमारे ग्रह बहुत खराब हैं, राहु केतु शनि जो है हमारे जीवन की दशा में आ गए हैं, हम दुख दुख भोग रहे नहीं, हमारे कर्म को भी दोष देते हैं। तो कर्म कैसे किया, कर्म बुरा खराब किया मन के द्वारा, हमारा समय खराब है, तो न समय न काल का दोष है, न कर्म का दोष है। कर्म का दोष है लेकिन कर्म जो है उसको दोष देने वाला मन है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, नायम जुनो वे सुध केतु न देवतात्मा गृह कर्म काला, मन परम कारण आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। तो ये संसार चक्र में है, संसार चक्र भ्रमता शरीरों, हम जो भ्रमण कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा दोष है यह मन का है। तो मन को संयत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आप देख सकते हैं विश्वामित्र का और सौवरी मुनि का। विश्वामित्र 10,000 वर्ष तपस्या किए और समाधि में है, वो सोच रहे हैं कि 9 द्वारों को सर्व द्वार सर्व द्वारों को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुदा और उपस्थ। तो सामने से मेनका आ रही है अप्सरा और उसको देख नहीं रहे क्योंकि आंख बंद है, आंख को बंद किया है, लेकिन क्या है वो कान का द्वार खुला हुआ, कान के द्वार को बंद नहीं किया। तो मेनका जब आ रही है और चल रही है तो उसकी चाल इतनी उसमें घुंघरू है, एंकल बेल बज रहे हैं, उसकी छम 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 आवाज आ रही है। तो वो उस आवाज ने मुनि को व्यथित कर दिया। विश्वामित्र को सोचा जिसकी चाल इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो हमें जितने भी इंद्रियां हैं उनके द्वार हैं उनको सबको कंट्रोल करना, उनको मन ही है, मन ने सोचा ना अगर मान लो कि कान ने सुना भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख ने देखा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख के द्वारा हम कुछ देखते हैं, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष का की छवि देखते हैं, और हमारा माइंड एजिटेट हो जाता है, माइंड हमारा जो है एजिटेट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मन, अगर वो विश्वामित्र नहीं सोचते ये कि जिस नारी की चाल इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी, तो कोई समस्या नहीं होती, तो प्रॉब्लम मन का है। तो मन के द्वारा हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, इसीलिए जो है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानम चैन अहेतुकम। तो भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं, और ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप ज्ञान आता है भक्ति के द्वारा। जिस प्रकार की भक्ति के द्वारा मुक्ति भी मिल जाती है अपने आप, भक्ति के लिए मुक्ति को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सौभरी मुनि का उदाहरण देखिए आप, सौभरी मुनि जो है यमुना जल में है, पवित्र जल में है, और वहां समाधि स्थित, समाधि में स्थित है, और वो चाह रहे हैं इंद्र शरीर के नौ द्वारों को बंद करने का। उन्होंने नाक बंद कर दिया, नाक से उन्हें प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास भी रोके हुए हैं, कान भी बंद किया है, सुनने रहे हैं, लेकिन आंख खुली हुई है, आंख पूरी तरह नहीं खुली है, आधी खुली और आधी बंद है, हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन। तो जो आधी आंख खुली हुई है उसे देखा मछलियां, मछलियां जो रमण कर रही हैं, तो जो मछलियां रमण कर रही हैं तो वो उनको जो है एक प्रकार से मन में सोचा कि मुझे भी विवाह करना चाहिए, वो यहां मन आ गया। फिर तो एक्चुअली क्या है कि हम आंख को, आंख का कार्य देखना है वो हम बंद नहीं कर सकते हैं, कान का कार्य सुनना है वो हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषि केन ऋषि के जो सेवनम भक्ति उच्चते। तो गए वो फिर राजा मंदाता के यहाँ गए, और वहां पर उनकी जो 50 राजकुमारियां थीं, कहा नन हम तो नहीं करेंगे, आप तो बूढ़े आदमी से कौन शादी करेगा। वापस आए, योग बल के द्वारा नवयुग का रूप धारण किया, गए तो सबने कहा मुझे करना है, मुझे करना है। पहले सब मना कर रहे थे, कहा सब तो कहा चलो भाई 50 के साथ विवाह कर लिया। तो कहा फिर बाद में सोचने लगे, अरे मैंने क्या किया, मैं तो योग में लगा हुआ था, साधना में लगा हुआ था, अभी योग साधना करते करते फिर अभी ये कहां से मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, तो बाद में वैराग्य ले लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म शरीर का नाश तभी होता है जब भगवान की भक्ति की जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मान लो भक्त, क्योंकि ऐसा कहा गया है आचार्य के द्वारा कि भक्ति करने की बिगिनिंग की स्टेज में इमीडिएटली जो है वो जो नाना प्रकार के मन का जो दोष है उसका फल क्या होता है, भय होता है, विषाद होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, मोह होता है, तो लैमेंटेशन है, इल्यूजन है, इमीडिएटली नहीं जाता है। आप जब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैंटिंग शुरू कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैं प्रभु जी मैं 10 साल से चैंटिंग कर रहा हूं और कुछ ऐसा हमको रिलेशन नहीं हो रहा है, भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, सामने तो नहीं दिखाई पड़ते, आत्मा भी नहीं दिखाई पड़ते, हृदय में भी दिखाई दर्शन नहीं हो रहा है, कुछ लग रहा है कि मैं आध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं, तो समय लगता है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योगा आपको समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। जिस प्रकार की ये जो चक्रधर ठाकुर उदाहरण देते हैं कि पेट में हम भोजन करते हैं तो भोजन पचाने कौन पचाता है? फायर। डाइजेशन जो फायर है उसको कहते हैं वैश्वानला। तो इमीडिएटली भोजन नहीं पचता है, फायर है, आपने भोजन किया है तो जो ईटन फूड है उसका जो बैड पोर्शन है वो आग जला देती है, और जो उसका अच्छा पोर्शन है उसको प्राणवायु को नूरिश करती है। लेकिन इट टेक्स 7 to 8 hours, 7-8 घंटे लगते हैं भोजन पचने में अच्छी तरह से। एक बार आपने खाना खाया तो दूसरा भोजन करने के बीच में 7 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि इट टेक्स 7 to 8 hours टू डाइजेस्ट द फूड। उसी प्रकार से कि क्या होता है कि हम जब भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति का प्रारंभ करते हैं, तो हमारे अंदर जो माया के संसर्ग से हमारे अंदर भय है, शोक है, मोह है, वी हैव गॉट फियर, लैमेंटेशन। सबसे बड़ा फियर हमारा डेथ आने वाला है, और भय कौन पैदा करता है? काल, टाइम। टाइम प्रोड्यूसेस फियर इन द माइंड ऑफ द कर्मीज। अरे हम तो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब मेरी मृत्यु निकट है, मेरा क्या होगा? What will happen to me? So the time produces fear in the mind of the karmis. और शोक, शोक क्यों होता है कि हमारे पास जो चीज है अगर खो जाती है, वो खोने का जो वो शोक है कि भाई ये हमारे पास इतनी सुंदर चीज थी, मेरी पत्नी थी वो चली गई, मेरी संतान मेरे पास नहीं, धन था धन भी चला गया, तो ये शोक है। और फिर शोक होता है तो विषाद हो जाता है, लैमेंटेशन, अरे हम क्या करेंगे। तो एक बार जपदाका महाराज कह रहे थे, उसे यही प्रश्न किया गया कि मैं इतनी दिनों से चैंटिंग कर रहा हूं और कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद से नो, इट टुक मी 20 years टू परफेक्ट माई डिवोशनल लाइफ। जब श्रील प्रभुपाद को 20 साल लगे पूरा भक्ति पूरा करने के लिए, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। हमें तो अगर मैंने इस जन्म में अगर हो जाए तो ये चमत्कार होगा। इफ यू कैन परफेक्ट आवर डिवोशनल लाइफ इन दिस लाइफ टाइम, इट इज आइदर मिरेकल और इट इज ब्लेसिंग फ्रॉम कृष्णा एंड प्रभुपाद एंड गुरु, अवर गुरु। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, साधु संघ से लेकर के और प्रेम के बीच में 12 stages हैं। आधो श्रद्धा तो साधु संघ, भजन क्रिया तो निवृत्ति। तो श्रद्धा हुई, साधु संघ हुआ, इसके बाद भजन कीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अनर्थ निवृत्ति आरंभ हो गई करना। अभी इमीजिएटली तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाएगी ना, कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? निष्ठा चाहिए, आसक्ति चाहिए, रति चाहिए, तब जा करके फिर भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा। तो श्रद्धा से लेकर के और प्रेम के बीच जो 12 stages हैं, आपको 12 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? एक साथ प्रेम में आ जाओगे क्या? तो कैसे कहते हैं कि भाई हमें चैंटिंग कर रहा है, हमें भगवत प्रेम नहीं हुआ मेरे अंदर? साधु संग करो, साधु संग करते जाइए, साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग करते रहेंगे, भजन क्रिया करते रहेंगे। साधुओं का मतलब यही नहीं कि खाली साधु बने, ग्रंथों का भी साधु हैं, तो भक्त वृंद भी हैं, और बाद में ग्रंथों का भी संग करते जाइए, और साधना जब पूरी होती रहेगी, साधना पूरी होगी तो साधन भक्ति से साध्य भक्ति हो जाती है, और साध्य भक्ति से भाव भक्ति होती है, और भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति होती है। तो साधन ठीक है, साधन हम कर रहे हैं, और साधन में अगर उसमें क्या है कि किसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से अलग होना पड़ेगा। ज्ञान कर्म अन्याभिलाषिता शून्यम, साधना भी कर रहे हैं और साथ साथ में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की इच्छा भी है, तो वो साधना आपकी साधना परफेक्ट नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामितम, कर्म के प्रति आस्था है, ज्ञान के प्रति आस्था है, तो आपकी क्या होगी, वो कर्म मिश्र भक्ति हो गई, ज्ञान मिश्र भक्ति हो गई, वो शुद्ध भक्ति नहीं हुई। तो साधु संग साधना है, साधु संग से करते करते फिर आप निष्ठा पर आएंगे, आसक्ति पर आएंगे, फिर रुचि होगी, करते करते फिर भाव होगा, भाव भक्ति से फिर बाद में आप प्रेमा भक्ति में आएंगे। जब आपके अंदर कोई भी सारी भौतिक इच्छाएं का नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब जा करके आपकी भक्ति पूर्ण होगी। तो इस पुरंजन के आख्यान से हमें एक शिक्षा लेनी है कि हमें साधु संग अवश्य करना है। नारद मुनि का साधु संग नहीं हुआ होता प्राचीन वरी राजन को, तो वो उसी में लगा हुआ था, सोचा सबसे बड़ा मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं एक यज्ञ किया, दो किया, हजारों यज्ञ किए, तो क्या फायदा हुआ। बोले उस यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है, भक्ति ही, भक्ति योगी जो है वो सबसे महान जो है आपका धर्म है, सबसे बड़ा यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये है। और कर्मकांड जो है वो कर्मकांड के द्वारा इस संसार का नाश नहीं होगा, चाहे कितने भी वेदों का अध्ययन कर डालो, कितना भी दान दे दो, कितनी भी तपस्या कर डालो, भले ही आप चांद्रायण व्रत करो, चतुर्मास व्रत करो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और कितने भी यज्ञ इत्यादि करो, तो यज्ञ दान कर्म तपस्याएं और वेदाध्ययन से कुछ होने वाला नहीं है। कि योगी परम स्थान उपरिचाद्यम, भक्ति योगी आप करेंगे तो ही जो है संसार का नाश होगा, नहीं तो संसार आपको भटकाता रहेगा, एक योनि से दूसरी योनि में, एक लोक से दूसरे लोक में, और एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकाता रहेगा। तो भक्ति योग ही सबसे बड़ा इसका एक उपाय है, और यही हमें पुरंजन के आख्यान से यही सीखना है। और इसके जैसे पुरंजन प्राचीन वरी राजा ने नारद मुनि का संग किया, वैसे हमें सुंदर भक्तों का, सीनियर भक्तों का सत्संग करता रहना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ग्रंथ में कैसे ग्रंथ हैं, जो है डिवोशनल ग्रंथ, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत का संसार करना चाहिए। उसके बाद ही जो है हम इस संसार को नष्ट कर पाएंगे और भगवान का दर्शन कर सकेंगे। गॉट एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।